ओम शांति। आज हम सभी के बीच में उपस्थित है आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी उर्मिला दीदी जी। हम आपका जीवन परिचय देते हैं। आप शांतिवन अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में राजयोग शिक्षिका के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ज्ञानामृत नामक मासिक पत्रिका के सह संपादक भी हैं और आपने अपना एजुकेशन एमए इंग्लिश कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में किया हुआ है। आप 1981 में ज्ञान में आए और 1985 में आपने समर्पित रूप में अपनी सेवाएं दी हुई है। आपने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में विभिन्न विषयों पर भी भाषण दिए हुए हैं। आपने केन्या, थाईलैंड और म्यांमार में भी ईश्वर की सेवाएं दी है। आपको बाढ़, भूकंप आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं में पुनर्वसन शिविरों के आयोजन का विशेष अनुभव है। आप इस पवित्र विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के कोर्सेस प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अपना विशेष योगदान करते हैं। आप बहुत अच्छी लेखिका हैं। आपके लेख अक्सर कई पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं। आप तनाव मुक्त जीवन, व्यसन मुक्त जीवन, क्रोध मुक्त जीवन, सकारात्मक सोच, व्यक्तित्व विकास, मन प्रबंधन आदि विषयों पर भी बहुत सुंदर रूप से व्याख्यान देते हैं। ऐसी अनमोल हस्ती हम सभी के बीच में है जो आज हम सभी को अनमोल ज्ञान रत्नों से लाभान्वित करेंगे। तो दीदी जी के लिए दोन लाइन में कहूंगी, गगन की शान तो तारे है, गगन की शान तो तारे है, चमन की शान तो बहारे है। और आज इस फरिश्तों की सभा में, ब्राह्मणों की सभा में आज यही शान है कि दीदी जी अपना अनमोल समय निकालकर हम सभी के बीच में अनमोल ज्ञान रत्नों से श्रृंगारित करने के लिए यहाँ पधारे हैं। तो मैं दीदी जी को विनंती करती हूँ कि दीदी जी बहुत अच्छे ज्ञान रत्नों से आप सभी को लाभान्वित करें। आदरणीय उर्मिला दीदी जी, ओम शांति।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाबा ने हम बच्चों को दो होमवर्क दिए। एक होमवर्क की क्लास तो आपकी हो गई स्वराज्याधिकारी, और अब हम दूसरे होमवर्क की क्लास करेंगे तीव्र पुरुषार्थी। मम्मा ने पुरुषार्थी शब्द का अर्थ समझाया था, पुरुष मतलब आत्मा, और इस शरीर रूपी रथ पर सवार होकर के वो जो कर्म करती है। तो शरीर अलग और आत्मा अलग, मैं पुरुष हूँ, शरीर रथ है, इस स्थिति में टिक के रहना, ये है पुरुषार्थी। बाबा ने कहा दो प्रकार के पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थी तो सभी हैं, पर एक तीव्र हैं और दूसरे साधारण हैं। तो हम कौन से वाले हैं? तीव्र वाले हैं ना। तो देखते ही हैं तीव्र पुरुषार्थियों की कौन कौन सी खूबियां हैं। तीव्र पुरुषार्थ में जो सबसे बड़ी बाधा बनती है वो है आलस्य, अलबेलापन, सुस्ती, बहानेबाजी। तो जो इसको जीत ले वो तीव्र पुरुषार्थी। बाबा ने कहा जब आलस्य आता है ना तो मन मत श्री मत में मिक्स हो जाती है, और फिर बाबा से वेरीफाई नहीं कराते या किसी बड़े से वेरीफाई नहीं कराते, मन मत के आधार पे चलते ही सुस्ती आलस्य बढ़ता जाता है। मन में आता है मैं जो कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं, और जब सुस्ती आलस्य आती है ना, तो बुद्धि का कनेक्शन बाप से भी कट जाता है, बड़ों से भी कट जाता है, श्रीमत से भी कट ऑफ हो जाता है। और आलस्य वाले के बोल कैसे होते हैं, कर लेंगे, देख लेंगे, जल्दी क्या पड़ी है, हो ही जाएगा। फिर कहते हैं आज नहीं कल कर लेंगे, ये वाला काम करके फिर कर लेंगे, अमुक व्यक्ति करेगा तो हम भी कर लेंगे। लेकिन बाबा ने कहा बच्चे कर लेंगे नहीं, करना ही है, होना ही है। कब नहीं कर लेंगे, लेकिन अब करना है। तीव्र पुरुषार्थी की भाषा है अब, आलसी की भाषा है कब। फिर एक और बोलते हैं, सब चलता है, कौन देखता है। तो बाबा ने कहा जो कहते हैं ना सब चलता है, रिजल्ट में वो भी चलेंगे, उड़ेंगे नहीं। आलस्य पहले साधारण पुरुषार्थी बनाता है, फिर धोखा देता है, फिर कमजोर करता है, और कमजोर होने से कमियां प्रवेश हो जाती हैं। तो बाबा ने कहा बार बार चेक करो मेरा बुद्धि का कनेक्शन बाप के साथ है कि नहीं। आलस्य और सुस्ती वाला मन में सोचता है कि 6-8 घंटा अव्यक्त स्थिति में रहना अभी तो बड़ा मुश्किल है, आगे चल करके देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे। फिर प्रवृत्ति में रहते बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं रहती, और किसी दूसरे को तीव्र पुरुषार्थ करते देख के सोचते हैं कि इतना हम नहीं कर सकते, हम तो जहां हैं वही ठीक है, तो ये भी आलस्य और अलबेलेपन की निशानी है। बाबा ने कहा है तुम बच्चे योद्धे हो, युद्ध के मैदान में हो, माया के साथ तुम्हारी युद्ध। और जो योद्धा होता है ना आराम पसंद होता है ना सुस्त होता है, वो तो हमेशा चुस्त रहता है, उसकी बुद्धि में केवल युद्ध और विजय, युद्ध और विजय यही घूमता रहता है, अपने शस्त्रों से हमेशा लैस होता है, व्यक्ति और वस्तु को किनारे करके हमेशा अपनी महावीरता, अपनी शक्ति, अपने बल को बढ़ाने के संकल्प करता रहता है। तो हम भी योद्धे हैं, युद्ध के मैदान में हैं। एक बार मुझे याद है मैं कंटोनमेंट एरिया में गई थी, जून का महीना था, ऊपर तपती धूप थी, नीचे तेज रेत थी गर्म, लेकिन जो सैनिक थे वो उसी चिलचिलाती गर्मी में अपनी मशीनों को ठीक कर रहे थे। हमने कहा भाई साहब अभी युद्ध तो होने वाला नहीं है, आप इतनी गर्मी में ये काम क्यों कर रही हो। तो उसने जवाब दिया बहन जी युद्ध बता के थोड़े आता है कि मैं आने वाला हूं, तैयारी कर लो, युद्ध तो अचानक आता है, इसलिए हम हमेशा अपडेट रहती। तो मुझे उसकी ये बात सुन के बड़ी प्रेरणा मिली कि सचमुच माया भी बता के नहीं आती, परिस्थिति भी बता के नहीं आती, और जो फाइनल पेपर है वो भी बता के नहीं आएगा कि मैं आ रहा हूं। तो हमको भी हमेशा अपडेट रहना चाहिए, रेडी रहना चाहिए, अगले स्टेप कुछ भी हो सकता है, कोई भी पेपर आ सकता है, परिस्थिति आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो हम हमेशा एवर रेडी है। दूसरा जो तीव्र पुरुषार्थी होता है वो दिनचर्या, हमारी जो ईश्वरीय दिनचर्या है उसमें स्टेप बाय स्टेप एक्यूरेट चलता है। दिनचर्या हमारी अमृत वेले से शुरू होती है, बाबा ने कहा अमृत वेले को पावरफुल बनाओ, स्नेह तो है, स्नेह के साथ शक्ति भी चाहिए। तो अमृत वेला पावरफुल कब बनता है, कैसे बनता है, बाबा ने कहा उठते ही परिवर्तन शक्ति को यूज करो, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा, और मैं आत्मा अवतरित आत्मा हूं। जैसे सृष्टि के आदि काल में आत्माएं परम धाम से उतर करके सतयुग में देवताई शरीर धारण करती हैं, ऐसे मैं आत्मा भी ब्रह्मलोक से अभी अभी उतरी हूं, अभी अभी मैंने इस शरीर को धारण किया है। और एक अवतरित आत्मा के काम क्या होते हैं, अवतार के काम क्या होते हैं, लोगों के दुख हरना, लोगों को शांति देना, लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करना, मैं उनके लिए अवतरित हूं। तो सारा दिन इस कर्म की स्मृति में रहो और रात को फिर अपने ब्रह्मलोक में वापस चले जाओ। तो दिनचर्या की शुरुआत बहुत पावरफुल चाहिए। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि ब्रह्मा माँ ममतामयी माँ है, उसका बच्चों के रिमझिम के बिना मन नहीं लगता है। तो अमृत वेले वो बच्चों को आह्वान करती है वतन में और वहां शक्तिशाली चीजें खिलाती है, दृष्टि से शक्ति देती है, अभ्यास की एक्सरसाइज करवाती है। जैसे लौकिक दुनिया में माता पिता बच्चों को शक्तिशाली चीजें खिलाते हैं, ठंडी के दिनों में लड्डू खिलाते हैं, काजू बादाम खिलाते हैं, घी खिलाते हैं। बाबा ने कहा साकार में भी बाप दादा ने आप बच्चों की बहुत खातरी की, लेकिन अब वही खातरी अव्यक्त वतन में होती है। तो बच्चों को क्या करना है, आंख खुलते ही फरिश्ता रूप धारण करके अव्यक्त वतन में पहुंच जाना है, बाबा के सामने बैठ जाना है। बाबा दृष्टि से अपनी सर्व शक्तियां बच्चों में भर देते हैं। और बाबा ने कहा अमृत वेले का टाइम ऑफिशियल नहीं है, ये महारथी है, ये घोड़े सवार है, ये प्यादा है, ऐसी बाबा के सामने काउंटिंग नहीं है। बाबा भोलेनाथ बन के बैठते हैं, सारे भंडारे खोल के बैठते हैं, इसलिए जो जाएगा उनको बाबा वरदानों से भरपूर कर देंगे। अमृत वेले किसी को अपने पाप बख्शवाने हो, मनोकामनाएं पूर्ण करनी हो, कोई सिद्धि प्राप्त करनी हो, कोई समस्या का समाधान करवाना हो, कुछ भी चाहिए, निर्विघ्न बनना हो, तो ये सब चीजें संकल्प करने मात्र से प्राप्त होंगी। बाकी टाइम में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अमृत वेला वरदानी समय है। तो वरदान प्राप्त हो और पुरुषार्थ से प्राप्त हो, उसमें अंतर होता है। तो अमृत वेले पुरुषार्थ नहीं है, वरदान, बस आपको अशरीरी बन करके बाबा के सामने बैठना है। आज भी बाबा ने मुरली में कहा था कि जब आप बाबा के सामने जाते हो तो बाबा अपनी सर्व शक्तियां आप में फिल कर देते। कहना नहीं पड़ता कि मुझे ये शक्ति दो, ये गुण दो, बस बाबा के सामने बैठ जाओ। जैसे हम सूर्य के सामने बैठते हैं तो कहते थोड़े हैं कि गर्मी दे, बगीचे में बैठते हैं सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, अपने आप ही गर्म हो जाते। तो बस ज्ञान सूर्य के सामने जाके बैठ जाओ, आत्मा बन के अपने आप ही सर्व शक्तियां सर्व गुण अवतरित होने लगते हैं। तो तीव्र पुरुषार्थी मतलब अमृत वेला बहुत पावरफुल, रेगुलर और हर दिन नई अनुभूतियां। आप चाहो तो उन अनुभूतियों की एक बुक बना सकते हो, आज मुझे क्या अनुभव हुआ लिखो, आज मुझे क्या अनुभव हुआ लिखो। कभी फरिश्ता रूप का अनुभव, कभी बीज रूप का अनुभव, कभी रू रिहान का अनुभव और कभी विश्व सेवा का अनुभव, अलग अलग अनुभव। और कई बार तो ऐसी यूनिक चीजें बुद्धि में आती हैं जो हमें सेवा में या स्व उन्नति में बहुत मदद करती हैं। फिर अगला है, जो तीव्र पुरुषार्थी होगा उसकी स्थिति होगी उड़ती कला की। एक होती है गिरती कला, फिर होती है चलती कला, फिर होती है दौड़ती कला, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी की है उड़ती कला। उड़ती कला वाले को हम कहते हैं फरिश्ता, अर्थात फरिश्ता स्वरूप में। बाबा कहते हैं कर्म योगी फरिश्ता बन करके कर्म करो। तो दिन भर में वो जो कर्म करेगा उसमें उसकी उड़ती कला की स्थिति होगी, बेहद में रहेगा, अपने आदि अनादि संस्कारों की स्मृति को प्रत्यक्ष करेगा, अपने चेहरे और चलन से बाप समान होने की अनुभूति कराएगा, निमित्त और निर्माण भाव में रहेगा, देह से न्यारा, सबका प्यारा और सर्व बंधनों से मुक्त, जिसको बाबा कहते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति की स्थिति में रहेगा। तो ये दिन भर की कर्म योग की स्थिति रहेगी। अमृत वेला, उसके बाद फिर हम मुरली सुनते ही हैं, तो बाबा ने कहा जो मुरली है वो दिन भर की खुराक। तीव्र पुरुषार्थी साधारण रीति से मुरली नहीं सुनता है, लेकिन बहुत ही अतिंद्रिय सुख में डूब करके मुरली सुनता है। जैसे हम कोई बहुत मीठी प्यारी चीज खाते हैं तो मुंह में स्वाद आता है, तो ऐसे बाबा की एक एक लाइन से बुद्धि रस ग्रहण करती है। तो मुरली को कैसे सुनना है, बाबा जो शब्द बोले उसका स्वरूप बन जाओ। बाबा स्वर्ग की बात करे तो भीतर के नेत्र के सामने स्वर्ग ले आओ। परम धाम की बात करे तो भीतर के नेत्र के सामने परम धाम ले आओ। अगर बाबा लक्ष्य की बात करे तो भीतर के सामने श्री लक्ष्मी श्री नारायण को ले आओ। फरिश्तों की बात करे तो भीतर के नेत्र के सामने फरिश्ते आ जाए। तो जो शब्द हम सुने उसका हम स्वरूप बनते जाएं तो मुरली याद भी होगी, मजा भी आएगा। और मुरली आत्म अभिमानी स्थिति में सुननी है, क्योंकि बाबा कहते हैं मैं शरीरों को नहीं सुनाता, मैं आत्मा को सुनाता हूँ। अगर शरीर बन के मुरली सुनेंगे तो अंदर जाएगी ही नहीं, और आत्मा बन के सुनेंगे तो जैसे एक एक बूंद आत्मा पे गिर रही है, एक एक रतन आत्मा को भरपूर कर रहा है। और एक रतन की कीमत कितनी है, लाखों करोड़ों अरबों खरबों पदम। तो कितने पदम हमको रोज मुरली से मिलती। हम जब क्लास में आते हैं और जब क्लास से मुरली सुन के उठते हैं तो हमारे में अंतर होता है, क्योंकि हमारे कितने पदम खाते में जमा हो गए। हम और अधिक अमीर बन करके उठते हैं, ज्ञान धन से भरपूर होके उठते हैं। उसके बाद तीव्र पुरुषार्थी भोजन कैसे करेगा, दिनचर्या में भोजन भी है ना।
धाम तुम्हें जाना है, कर्मों के बल पर ही सतयुग में अब तुम्हें आना है। सतयुग में अब तुम्हें आना है।
तो हम बात कर रहे थे भोजन की। देखो बाबा के साथ हमारे ऐसे तो मुख्य रूप से 8 संबंध हैं, पर वैसे 108 संबंध होते हैं। तो एक ग्राही एक संबंध के साथ, एक ग्राही पिता के साथ, एक ग्राही भोजन की माँ के साथ, एक सतगुरु के साथ, एक टीचर के साथ, एक बड़े भाई के साथ, एक छोटे भाई के साथ, मतलब भिन्न भिन्न तरीके से हम भोजन खाते बाबा को याद कर सकते हैं। तो अटेंशन की बात है। एक संत ने अपना अनुभव लिखा कि जब मैं भोजन करता हूँ तो मुझे अपने पीछे एक काली छाया दिखाई देती है। एक दिन पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने कहा मैं माया हूँ। तो जब मैं भोजन करता हूँ तब तुम क्यों आती हो, उसने कहा मैं इसलिए आती हूँ कि जिस ग्राही में तुम भगवान को याद नहीं करोगे उसको मैं खा जाऊंगी। तो बाबा भी कहते हैं ना कि अगर तुम मुझे याद नहीं करते हो तो भोजन को माया खा जाती है, माया मोटी हो जाती है और तुम कमजोर हो जाते हो। तो वो संत की बात नहीं, हमारे पीछे भी खड़ी रहती है माया, देखती रहती है। तो बहुत बहुत अटेंशन की जरूरत है भोजन खाते, तो बहुत अधिक अटेंशन की जरूरत। ऐसे बाबा ने जो मुरली चलाई अभी लेटेस्ट, उसमें कहा था कि कर्म योग में अधिक अटेंशन की जरूरत है, क्योंकि बुद्धि कर्म में उलझती है, कर्म से जुड़ी बहुत सारी बातों में उलझती है, लेकिन भोजन में कर्म योग से भी ज्यादा अटेंशन की जरूरत है। और तीव्र पुरुषार्थी का शयन कैसा होगा, बाबा कहते हैं रात्रि को मन की स्लेट को खाली करके सो। दिन भर में जो भी कुछ हुआ या तो बोल के बाबा को सुनाओ या तो कागज में लिखो, और जो रोज का हिसाब किताब है बाबा को दे दिया तो मन खाली हो गया। बाबा ने कहा फिर धर्मराजपुरी में जाना नहीं पड़ेगा। और देखने में आता है कि जब हम मन को खाली करके सोते हैं तो सुबह उठते हैं तो उस खाली मन में परमात्मा की याद बहुत अच्छे से समाती है। अगर रात्रि के भरे भराए मन को लेके सोते हैं तो एक तो सपने भी उल्टे सीधे आते हैं, और सुबह उठते हैं तो उस भरे हुए मन में भगवान को बैठने की जगह ही नहीं मिलती। तो छोटी छोटी बातें, कई बार हम कहते हैं छोटी सी बात बाबा को क्या बताएं, छोटी हो या बड़ी सब कुछ बाबा को अर्पित करना है। छोटे बच्चे कैसे होते हैं, स्कूल में कुछ हुआ, गली में खेलने में कुछ हुआ, एक एक बात मम्मी को कैसे सुना देते, और मम्मी हंसती रहती है सुन करके। तो हम भी छोटे छोटे बच्चे, इसलिए सब दिन भर की दिनचर्या की बातें बाबा को अर्पित करने की आदत डालनी है, पक्का संस्कार बनाना है। तो जितना ये संस्कार हमारा पक्का होगा उतना हमारी नींद योग निद्रा बन जाएगी। योग निद्रा का मतलब है नींद में बाबा ही दिखेगा या तो कुछ भी नहीं दिखेगा तो वो योग में काउंट हो जाएगी। तीव्र पुरुषार्थी एक बाप के लव में लीन रहेगा, बाप के सिवाय न तो कुछ दिखाई देगा न कुछ आकर्षित करेगा। बाबा ने कहा दो प्रकार के बच्चे हैं, एक लव में रहते हैं और एक लवलीन रहते हैं। तो जो लव में रहते हैं वो कभी लव में हैं और कभी लव ब्रेक हो जाता है, लेकिन जो लवलीन है वो हमेशा ऐसे ही डूबे रहते हैं जैसे मछली पानी में डूबी रहती है। तो लवलीन बनना है। पर कई भाई बहन कहते हैं कि हम बहुत कोशिश करते हैं, फिर भी बाबा की याद टूट जाती है। तो इसका बाबा ने एक मुरली में उत्तर दिया था कि एक होता है दिल से याद करना, एक होता है दिमाग से याद करना। दिमाग से जब याद करते हैं तो थोड़ी देर तो ठीक रहता है, पर दिमाग में कोई दूसरी बात आई तो फिर दिल भी बदल जाता है और फिर याद करने में मेहनत करनी पड़ती। फिर कहते हैं बाबा आपने साथ तो निभाया नहीं, कुछ अनुभव तो करवाया नहीं। कारण ये है कि दिमाग की याद थी, दिल की याद नहीं थी। दिमाग में कोई चीज जाती है ना तो निकल भी झट से जाती है, पर जो बात दिल में चली जाती है सारी दुनिया पुरुषार्थ कर ली फिर भी उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो दिल, दिल का स्नेह, जिगर का स्नेह जब वो होता है ना तो वो टूटता नहीं है। मुझे याद है एक बार बाबा पटियाला पंजाब में गए थे, बाबा भी थे मम्मा भी थी और वहां हमारी मिट्ठू दादी थी। तो बाबा जिस भी सेंटर पे जाते थे रौनक हो जाती थी और दादियां तो रूहानी नशे में भरपूर हो जाती थी, वो तो चाहती थी बाबा जाए ही ना। और जब बाबा के जाने का टाइम आया तो मिट्ठू दादी ने बहुत कहा बाबा एक दिन और रुक जाओ, लेकिन बाबा का तो प्रोग्राम बना हुआ था। तो बाबा जाने लगे, मिट्ठू दादी ने बाबा का हाथ पकड़ लिया, लेकिन बाबा ने हाथ छुड़ा लिया और बाबा को तो जाना ही था। तब मिट्ठू दादी ने एक बात बोली थी, वो है तो भक्ति मार्ग की, सूरदास ने अपने पद में बोली है, हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोए, जब जाओगे हृदय से सबल मानूंगी तोय। मतलब हाथ तो छुड़ा लिया क्योंकि आप सोचते हो कि मैं निर्बल हूं, पर आप मेरे दिल से जाकर के दिखाओ तब मैं मानूंगी कि आप सबल। तो जो चीज दिल में समा जाती है ना उसको कोई भी स्थूल आधार नहीं चाहिए, सूक्ष्म रूप में वो दिल में समाई रहती है, निरंतर बनी रहती है। तो लवलीन का मतलब है दिल में बाबा की याद समा गई, उसके सिवाय और कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। बस वो दिखे, वो स्मृति में रहे तो चैन आता है और नहीं तो मन बेचैन हो जाता है। ऐसा उसके साथ अटूट जिगरी सच्चा प्रेम तीव्र पुरुषार्थी का होगा। तीव्र पुरुषार्थी मेहनत में नहीं मोहब्बत में रहेगा। बाबा कहते हैं संगम युग स्नेह का युग है और बाबा स्नेह के हीरे मोती की थालियां भर भर के बच्चों को देते हैं। तो उन स्नेह के मोतियों से खिलते रहो, आनंदित होते रहो। ऐसे नहीं कि थोड़ी देर खेला और उसके बाद फिर किसी दूसरे काम में लग गए। निरंतर उन हीरे मोतियों के आनंद में डूबे रहो। बाबा ने कहा सतयुग में तो हीरे मोतियों का श्रृंगार करोगे, लेकिन यहां प्रेम के हीरे मोतियों से सदा सजे सजाए रहो तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, कोई भी बात आती है तो झट से माँ बाप के गोदी में समा जाती है। तो कोई भी बात आए, परिस्थिति आए तो आप भी गोदी में समा जाओ, मोहब्बत में समा जाओ तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तीव्र पुरुषार्थी बेफिक्र बादशाह होता है, चिंता तेरी तभी मिटेगी जब चिंतन में ले लो राम, ये तुमने भक्ति में भी सुना। तो वो सदा प्रभु का चिंतन करता है, चिंता आती भी है तो प्रभु को अर्पित करके निश्चिंत हो जाता है। और ब्रह्मा बाबा का जीवन हमारे सामने इसका बहुत सुंदर उदाहरण है। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण है, लेकिन एक उदाहरण जो मुरली में बाबा देते हैं कि देखो आप सबके सामने तो कितने एग्जाम्पल, दादियां बाबा मम्मा और भी बहुत बड़े हैं तो उनको देख करके हमको चलना तो बहुत सरल है, लेकिन ब्रह्मा बाबा के सामने तो कोई भी नहीं था। आगे क्या होने वाला है, क्या करना है, कैसे करना है, बहुत सारे प्रश्न उठ सकते थे, लेकिन बाबा ने सब प्रश्नों को बिंदी लगा करके कल्याण का मार्ग अपनाया, फुल स्टॉप का मार्ग अपनाया। और एक घड़ी तो ऐसी भी आई, 11 बज गए, घर में आटा नहीं, 350 बच्चे खाने वाले हैं। संकल्प चल सकता था कि क्या होगा, बच्चे भूखे तो नहीं रहेंगे, लेकिन संभव को असंभव कर दिया। संकल्प नहीं चले, मन बुद्धि बाप पे अर्पित कर दी कि जिस भगवान शिव को सारी दुनिया भोग लगाती है वो कभी भूखा नहीं रहता, तो भला उसके बच्चे कैसे भूखे रहेंगे। कोई भी बाप बच्चों को खिलाए बिना खाता ही नहीं, तो शिव भी तो सब आत्माओं का पिता है ना, तो क्या वो अपने बच्चों को नहीं खिलाएगा। मैं भी बाप का, यज्ञ भी बाप का, बच्चे भी बाप के। तो बाबा ने कोई चिंता नहीं की और आटा भी आ गया, भोजन भी बन गया और सबने बहुत प्यार से ब्रह्मा भोजन भी खाया। तो बाबा ने कहा आप बच्चों को भी बेफिक्र रहना है, अगर आप फिक्र करेंगे तो पुरुषार्थ कैसे करेंगे। फिक्र करते तो हमने 63 जन्म गुजार दी, एक जन्म है बेफिक्र बनने का। तो कोई भी बात आए बाबा को देख करके हल्के हो जाओ। तीव्र पुरुषार्थी हमेशा साक्षी होगा, किसी चीज में उलझेगा नहीं, इन्वॉल्व नहीं होगा, न्यारा और प्यारा होगा। दो दिन से बाबा कमल पुष्प का उदाहरण दे रहे हैं, कमल पुष्प न्यारा और प्यारा रहता है। बाबा ने कहा ये आपकी रचना है, तो आपकी रचना में जो गुण है वो आप में भी होना चाहिए। तो रहो सबके बीच में, लेकिन बॉडी से डिटैच, बंधनों से डिटैच। जैसे एक दर्पण है, दर्पण में हम चेहरा देखते हैं, तो दर्पण का काम है चेहरा दिखाना। मान लो हम दर्पण के सामने खड़े हुए, हमारे चेहरे पे दाग था, दर्पण के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ता, और फिर हमने दाग मिटाया और फिर हम दर्पण के सामने खड़े हुए, इसका भी दर्पण पे कोई असर नहीं पड़ता। उसका काम है चेहरा दिखाना, चाहे वो दाग वाला हो चाहे बिना दाग वाला हो, दर्पण साक्षी। तो बाबा कहते ऐसे आप बच्चे भी साक्षी होके रहो, न किसी का गुण चित्त पे रखना न किसी का अवगुण चित्त पे रखना, सबको साक्षी होके देखो, सबको रिगार्ड दो और सबके साथ निमित्त भाव से, साक्षी भाव से व्यवहार करो। अगर कोई बात चित्त पे बैठ जाती है तो वो हमको उलझा लेती है। जैसे हम ट्रेन में सफर करते हैं, कितने लोग दिखते हैं, कितने खेत दिखते हैं, कितने घर दिखते हैं, कितने आते जाते पशु प्राणी दिखते हैं, लेकिन किसी में भी हमारी दृष्टि उलझती नहीं, तो हम सफर का आनंद लेते हैं। मान लो हम सोचने लगे कि ये गाय यहाँ क्यों खड़ी है, ये खेत अभी तक कटा क्यों नहीं, ये पेड़ को फल लगे किसी ने अभी तक तोड़े क्यों नहीं, तो सफर का क्या होगा, सफर का आनंद ही खत्म हो जाएगा। तो जीवन भी एक सफर है, इसमें हमें बहुत चीजें दिखती हैं। अगर हम हर एक चीज के लिए क्यों हुआ क्या हुआ ऐसे करने लगेंगे तो जीवन का आनंद ही गुम हो जाएगा। इसलिए दृश्य देखते रहो, आगे चलते रहो, पीछे वाले दृश्य को लेट गो करते रहो, तो जीवन का मजा आएगा। जो ट्रस्टी है वो हमेशा एक रस, एक रस का मतलब क्या है, एक रस का मतलब है एक से निरंतर रस लेने वाला, अतिंद्रिय रस, वो तो भगवान से ही मिलता है। और बहुत सारे रस हैं इंद्रियों के रस, आंख का रस, कान का रस, मुख का रस, स्पर्श का रस। तो अगर हम इंद्रियों के रस में डूब गए तो वो तो बहुत सारी है ना, बहुत प्रकार के हैं, और वो खींचते रहेंगे। बाबा ने कहा था ये पतित तत्व हैं, ये आत्मा को नीचे की ओर खींचते हैं, सतयुग के तत्व पावन तत्व हैं, वो आकर्षित नहीं करते। तो ये इंद्रियां बार बार आत्मा को अपनी तरफ खींचती, किसी ना किसी रस के वशीभूत करने की कोशिश करती, जीवा का रस आ गया, फिर खाऊं और खाऊं, खाने को नहीं मिला तो बार बार उसकी स्मृति आ रही है, तो खींच लिया ना आत्मा को जीवा ने, ऐसे ही देखने का रस, सुनने का रस। तो इंद्रियों को ताला लगाओ, काम पूरा हुआ और इन्हें ताले में बंद कर दो और मालिक बन करके बैठो और केवल एक रस में डूबे रहो। जो तीव्र पुरुषार्थी होगा वो अडोल होगा, अडोल हलचल में नहीं आएगा। एक बार किसी महिला ने हमसे सवाल पूछा था कि जब बच्चे परेशान करते हैं तो मेरा मन बहुत डावाडोल उठता है, मैं क्या करूं। तो जहां हम बैठ करके चर्चा कर रहे थे वहां पे पानी के बड़े बड़े बर्तन पड़े थे, जैसे टैंकी होती है, टब होता है, एक दो टब तो खाली थे और दो तीन टब भरे हुए थे, बड़े बड़े टब थे अच्छे। तो मैंने उस बहन से बोला कि देखो यहाँ एक खाली टब है और एक भरा हुआ है, अगर आप खाली टब को ठोकर मारोगे तो क्या होगा, वो पलटी खाएगा। प्लास्टिक का टब है, कई पलटी खाएगा, और भरे वाले को अगर आपने ठोकर मारी तो क्या होगा, आपके पांव को चोट लगेगी, उसको कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तो अगर हमारा अंतर मन खाली टब जैसा है, न ज्ञान न गुण न शक्ति, तो किसी ने भी कुछ कहा या कुछ प्रतिकूल हुआ तो हमारा मन भी पलटी खा जाता है, डावाडोल हो जाता है, ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ। और अगर हमारा मन उस भरे हुए टब की तरह से, तो अगर कोई बात आई तो वो बात ही हमसे टकरा के कमजोर होके वापस चली जाएगी, हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तो अडोल अगर रहना है तो मन को भरपूर रखो, घड़ी घड़ी इसको भरते रहो, कुछ ज्ञान की बातें, गुणों की बातें, शक्तियों की बातें, फिर ये कभी डावाडोल नहीं होगा। जो तीव्र पुरुषार्थी होगा वो पास्ट की तरफ झांक करके भी नहीं देखेगा, आज मैं यहां हूं और कल मैं नई दुनिया में हूंगा। जैसे बाबा को नशा था ना कि मेरी जो सतयुगी ड्रेस है वो खूंटी पे टंगी है और बस उतार के पहननी है, और दूसरा नशा था कि मैं जाकर के मिचनू बनूंगा। तो हम भी सतयुग का जो बाल रूप है, देवता ही बाल रूप है, घड़ी घड़ी अपने उस रूप को इमर्ज कर सकते हैं। आज मैं आत्मा इस देह में हूं, अभी छूटेगी और मैं उस छोटे से बाल रूप में, देवता ही रूप में जाने वाला हूं, ये मेरा भविष्य है। और फिर बाल रूप से मुझे बड़ा बनना है, तो वो हमारा लक्ष्य है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण। तो वो ड्रेस खूंटी पे टंगी है और मेरा संपूर्ण रूप हाथ में माला लेकर के मेरे से मिलने आ रहा है, चला आ रहा है, चला आ रहा है, और उसने गाल माला मेरे गले में डाल दी और अब मैं और वो दोनों मिलके एक हो गई। मतलब मैं अपने देवताई रूप की भ्रुकुटी में जाके बैठ गए, इस शरीर को छोड़ दिया। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि जैसे बाप प्रवेश होने योग्य है, ऐसे आत्मा भी प्रवेश होने योग्य है। तो बाप प्रवेश हुआ ना परम धाम से आके ब्रह्मा के तन में प्रवेश हुआ, तो मैं आत्मा इस काया को छोड़ करके अपने संपूर्ण रूप की भ्रुकुटी में जाके बैठ सकती हूँ और फिर वहां बैठ करके आनंद ले सकती हूँ कि मैं संपूर्ण शरीर में विराजमान हूँ। ये संपूर्ण शरीर कितना हल्का, कितना स्वस्थ, कितना सुंदर, कितना सजा सजाया है। दोनों शरीरों में से अच्छा कौन से वाला है, संगम युगी शरीर भी अमूल्य क्योंकि ये हमें पुरुषार्थ करा रहा है, लेकिन सतयुगी शरीर हमारी मंजिल है, हमारा लक्ष्य, तो हमें वो आकर्षित करता है। तो घड़ी घड़ी एक आंख में मुक्ति, एक आंख में जीवन मुक्ति। मन अभी अभी परम धाम गया, अभी अभी सतयुग गया, ये हमारे लिए खेल, बच्चा क्या करता है, एक बार चढ़ेगा एक बार उतरेगा। तो हमको भी बाबा ने खेल दे रखा है, एक बार वहां जाओ एक बार वहां जाओ। कई भाई बहन कहते हैं बहन जी ये बातें तो ठीक है, लेकिन फिर भी मन पास्ट में बहुत जाता है, पास्ट को बहुत याद करता है, और पास्ट में भी उन बातों में जाता है जो बातें दुखदाई थी। देखिए हमारा जो वर्तमान जीवन है ये हम सबको अच्छा लग रहा है, वर्तमान सबको अच्छा लग रहा है, सबको पसंद है। अगर वर्तमान सबको पसंद है तो इसकी जो नींव है वो हमारा पास्ट। नींव के बिना तो भवन बनता नहीं है, तो ये पसंद है तो नींव भी पसंद आनी चाहिए। इसलिए पास्ट को अगर याद करते हो तो उसकी वाह वाह करो, वाह वाह मेरा भूतकाल कितना अच्छा था, जिसके ऊपर आज के इस सुंदर जीवन की बिल्डिंग खड़ी है। दूसरी बात, मान लीजिए पास्ट में किसी को तकलीफें हुई, किसी की सौतेली माँ थी, किसी का पिता शराबी था, कोई गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहा था, या किसी के घर में कलह कलेश थी, कोई भी कारण हुआ, वो एक युद्ध था ना, और उस युद्ध को उस संघर्ष को जीत करके हम वर्तमान में आ गए, जिंदा हैं, जीते तभी तो जिंदा है ना। तो अपनी जीत का जश्न मनाओ। अगर युद्ध में घाव लगे तो योद्धा कभी ये थोड़ी कहता है मेरे घुटने को घाव लग गया, कंधे को घाव लग गया, वो तो कहता है मैं जीत गया, बेशक घाव लगे पर मैं जीत गए। तो जीवन के युद्ध में हम जीत करके वर्तमान में आ गए तो घावों को क्या याद करना, अब तो जीत का जश्न मनाओ कि वाह मेरा पास्ट और उससे मुझे मिला वर्तमान, तो मेरा वर्तमान बहुत सुंदर है। फिर तीसरी बात ये भी है कि पास्ट तो हमारे हाथ से निकल गया लेकिन वर्तमान तो मेरी मुट्ठी में है, मैं उसकी योजना बनाऊं ना। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे पास 18 घंटे होते हैं, तो मुझे उन 18 घंटों की योजना बनानी है। पहला घंटा कैसे व्यतीत करना है, दूसरा घंटा, तीसरा घंटा, पहले में कितनी कमाई, दूसरे में कितनी कमाई। अगर हम वर्तमान की सुव्यवस्था करते नहीं है और पास्ट में ही डूबे रहते हैं तो पास्ट तो वैसे ही गया, वर्तमान भी चला जाएगा, और जिसका वर्तमान गया उसका भविष्य क्या होगा, वो भी अंधकार में। इसलिए वर्तमान में बिजी हो जाएंगे तो पास्ट में बुद्धि बिल्कुल नहीं जाएगी। तो जो तीव्र पुरुषार्थी है वो अपने वर्तमान के एक एक पल का सदुपयोग करता है। फिर जो तीव्र पुरुषार्थी है, जैसे बाबा ने भी कहा, उसका मंत्र है सफल करो तो सफलता पाओ, हर चीज सफल करो, छोटी से छोटी चीज सफल करो, हर संकल्प को सफल करो। कल मुरली में जो वरदान था उसमें बाबा ने कहा था कि जो सहज योगी होता है वो कहीं भी आकर्षित नहीं होता, और उसी को सप्तय योगी कहा जाता है। तो ऐसा योगी अपने संकल्प, कर्म, वाणी सबसे निरंतर सहयोग देता है, और सहयोग देने के फलस्वरूप उसे शक्ति की प्राप्ति होती है, वो बहुत शक्तिशाली बन जाता है। तो किसमें सहयोग देता है, ईश्वरीय कार्य में सहयोग देता है, विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोग देता है। जैसे फायर ब्रिगेड वाले, उनको कभी भूलता नहीं है कि हम आग बुझाने वाले हैं, डॉक्टर को कभी भूलता नहीं है कि मैं मरीजों को ठीक करने वाला हूँ, टीचर को कभी भूलता नहीं है कि मैं बच्चों को पढ़ाने वाला हूँ। तो फिर हमें क्यों भूल जाए कि मेरा एक एक श्वास, एक एक संकल्प, एक एक कर्म, एक एक बोल विश्व परिवर्तन के लिए, और विश्व परिवर्तन में मुझे इनको सफल करना है। दादी जानकी ने एक बार इतिहास की एक घटना सुनाई थी। एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे लाला लाजपत राय, अमीर भी थे। तो एक बार वो कहीं जा रहे थे, बग्गी होती थी उन दिनों, और उसका एक सेवक बग्गी में बैठा था। तो कुछ लोग उससे चंदा मांगने के लिए उसकी बग्गी के पास आके खड़े हुए और उन्होंने उसका वार्तालाप सुना। सेवक लालटेन जला रहा था तो माचिस की एक तिल्ली जलाई, वो जला नहीं, लालटेन जली नहीं। तो उस स्वतंत्रता सेनानी ने कहा, तूने एक तिल्ली बेकार कर दी, ध्यान से जला। फिर उसने दूसरी तिल्ली जलाई, वो भी नहीं जला पाई। तो उसने फिर थोड़ा रोष से बोला कि दूसरी तिल्ली भी बेकार कर दी। फिर तीसरी में लालटेन जल गई। तो वो चंदा मांगने वाले थोड़े से निराश हो गए कि ये आदमी तो बड़ा कंजूस है, हमें चंदा क्या देगा, एक तिल्ली मतलब व्यर्थ चली गई, तो देखो इसको कैसे समझा रहा है। फिर भी हिम्मत करके उसके नजदीक गए तो उसने एक नोटों से भरी थैली दान में दे दी। तो उन्होंने पूछा कि हमारे मन में तो आपके बारे में ऐसी धारणा हो गई थी कि आप बड़े कंजूस हैं, आपने तिल्ली के लिए अपने सेवक को डांट दिया। बोला, मेरे पास व्यर्थ गंवाने के लिए एक तिल्ली भी नहीं है, लेकिन देश की सेवा के लिए मेरा सब कुछ अर्पित है। मतलब मैं एक तिल्ली भी नहीं गंवाना चाहता, मुझे व्यर्थ गंवाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर सफल होता है तो बेशक मेरा तन मन धन सब कुछ सफल हो जाए। तो एक छोटी सी चीज, हम कहेंगे एक ही संकल्प तो था, एक ही छोटी सी बात तो मैंने मुख से बोली थी, लेकिन वो छोटी सी बात विश्व कल्याण में लगती तो हमें कितना गुना फल मिलता। जो तीव्र पुरुषार्थी है वो हमेशा निमित्त भाव में रहता है, निमित्त और निर्माण। हमारी दादी का मूल मंत्र था निमित्त भाव। एक मुरली में बाबा ने कहा, निमित्त भाव सर्व गुणों का जनक है, आप और कुछ मत करो, सिर्फ ये मंत्र पक्का कर लो कि मैं ट्रस्टी हूं, शरीर का भी ट्रस्टी हूं, अपने घर का भी ट्रस्टी हूं, परिवार का भी ट्रस्टी हूं, और जो दुनियावी धन दौलत है उसका भी ट्रस्टी हूं। अगर आप इस एक मंत्र को पक्का कर लेंगे ना, तो बाकी सारे गुण अपने आप आ जाएंगे। सत्यता, नम्रता, दिव्यता, पवित्रता, अंतर्मुखता, इनको अलग अलग धारण करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस ये मंत्र पक्का कर लो कि मैं ट्रस्टी हूं, क्योंकि ट्रस्टीशिप में मैंपन नहीं है, और सारी बुराइयों की जड़ मैंपन है, मैं करता हूं नहीं, मैं निमित्त हूं, करण करावन हार मेरा बाबा है। एक है मैं आत्मा करण हार हूं, बाबा करावन हार, ये भी बहुत सुंदर अनुभव है, जैसे मम्मा कहती थी हुक्मी हुक्म चलाए रा। और दूसरा है मैं आत्मा करावन हार हूं और इंद्रियां करण हार, मतलब मैं हाथ से कोई चीज उठा रही तो ये इंद्रियां करण हार, इन्होंने इस चीज को उठाया। किसने कहा, मैं आत्मा ऑर्डर दे रही हूं इसको उठाओ, तो हाथ करण हार है और आत्मा करावन हार। दिन भर हम जो भी कर्म करते हैं उसमें अगर ये अटेंशन रहे कि मैं आत्मा करवा रही हूं, हाथ कर रहा है, आंख कर रही है, मुख कर रहा है, जो भी है, पांव कर रही है, पांव चल रही है, मैं आत्मा चला रही हूं, तो ये भी क्या है, ये भी तो ट्रस्टीशिप है ना। मैं निमित्त हूं, शरीर को यूज कर रही हूं, शरीर से सेवा करवा रही हूं। अगर ये आदत हमने पक्की डाल ली तो देह अभिमान कभी आएगा, ये हमारा स्वमान है, मैं कौन सी आत्मा हूं, मैं विजयी आत्मा हूँ, राज्य अधिकारी आत्मा हूँ, मन बुद्धि संस्कार की कंट्रोलर हूँ, इंद्रिय जीत हूँ, तो कितने सारे स्वमान इसमें समाये हुए। और जहाँ स्वमान का प्रकाश है वहां देह अभिमान का अंधकार हो नहीं सकता। तो जो तीव्र पुरुषार्थी है वो निमित्त भाव में रहता है। निमित्त भाव क्या है? किसी शेख ने धर्मशाला बनवाई, वो तो बंबई चला गया और पीछे एक व्यक्ति को छोड़ गया, भाई तुम इस धर्मशाला की संभाल करो। तो वो धर्मशाला को साफ भी रखता है, पानी भी भरता है, बिस्तरे वगैरह भी अरेंज करता है, कोई रहने के लिए आता उसको पूरी सुविधा देता है। फिर वो व्यक्ति पूछता है कि इस धर्मशाला का मालिक कौन है? बोलेगा मालिक तो बंबई में बैठा है, तुम कौन हो? कहेगा मैं सेवाधारी हूं, मैं ट्रस्टी हूं, मैं निमित्त हूं। तो देखो काम तो वो सारी करेगा पर अपने को मालिक नहीं मानता, ये है ट्रस्टी। रामायण में श्री राम जी की खड़ाऊं गद्दी पर रख करके भरत ने राज्य किया। तो राज्य कैसे किया? मुझे राज्य का सुख नहीं चाहिए लेकिन अयोध्या सुरक्षित रहे, अयोध्या पे किसी का आक्रमण ना हो, अयोध्या के नर नारी कोई भी उदास ना हो, किसी को कोई अभाव ना हो, वो तो पूरा ध्यान रखा। लेकिन गद्दी किसकी है? राम की है। तो तुम अयोध्या को संभाल क्यों रहे हो? क्योंकि मैं निमित्त हूं, 14 साल के लिए ट्रस्टी हूं, जब वो आएगा तो मैं गद्दी उसको अर्पित कर दूंगा और जब तक मैं हूं तब तक मैं इसकी संभाल करूंगा। तो ये बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है। दुनिया में लोग कहते ही हैं कि हमें गद्दी चाहिए पर हम काम नहीं करेंगे इसलिए सब काम बिगड़ जाते। और यहां बाबा कहता है गद्दी तो बाप की है, आप जितनी सेवा करोगे उतना आपके खाते में जमा होता जाएगा। तो ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत कहीं भी लागू करो। महात्मा गांधी कहते थे व्यापार में भी ट्रस्टीशिप का सिद्धांत लागू करो। जो उद्योगपति है, व्यापारी है, वो ट्रस्टी बन के रहे। अगर वो ट्रस्टी बन के रहेगा तो जो वर्कर हैं वो भी खुश रहेंगे, आमदनी भी होगी, उत्पादन भी ज्यादा होगा। जब मालिकपन का भाव आ जाता है तो फिर हड़तालें होती हैं, असंतुष्टि होती है, आगजनी होती है, कोई बहुत गरीब हो जाता है, कोई बहुत अमीर हो जाता है। तो बाबा ने हम बच्चों को ये बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट दी है जिसमें सब गुण, सब शक्तियां और संपूर्ण ज्ञान समाया हुआ है। फिर बाबा ने कहा कि जो ट्रस्टी होगा वो सदा निर्भय होगा, जो तीव्र पुरुषार्थी होगा वो सदा निर्भय होगा। भय किस किस बात का होता है? मृत्यु का भय, भूत प्रेत का भय, विनाश का भी भय आता है किसी किसी को। लेकिन सारे भय जीतने का एक ही आधार है, मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं, न कभी मरी थी न कभी मरूंगी। आज तो बाबा ने कहा तुम मुर्दा बनने की पढ़ाई पढ़ते हो, तो जो पहले ही मर गए भला उन्हें मरने का क्या भय होगा? फिर भूत प्रेत का भय, भूत प्रेत भी उसके पास आते हैं जिनसे उनका हिसाब किताब होता है, जिनका हिसाब किताब नहीं वहां वो जाते ही नहीं। और आज ही बाबा ने कहा कि तुम ऐसी शांति की लहर फैलाओ कि कोई भी इविल सोल तुम्हारे नजदीक आएगी नहीं, आएगी तो उसको भी मुक्ति मिल जाएगी। तो अगर वो हमारे पास आएगी तो हम मुक्तिदाता बन करके उसको मुक्ति देंगे। बीमारी का भी भय होता है, बीमारी आए तो बाबा ने कहा बोलो वाह बीमारी वाह। क्यों? क्योंकि हमारा कर्जा उतर रहा है, किसी के सिर पे कई मन बोझ और कोई एक मन उतार ले तो खुश होगा, खुशी में नाचेगा मैं हल्का हो गया। तो 63 जन्मों के बोझ कैसे उतरेंगे? उसमें एक तरीका बीमारी भी, तो उसका भी भय नहीं, विनाश का भय, प्रकृति का भय। बाबा ने कहा था कि जहां तपस्वी ब्राह्मण बच्चा है, प्रकृति से अगर कोई नुकसान होने वाला भी होगा ना, तो दो कदम दूरी पे होगा, उसको आंच भी नहीं आएगी। और जब वो सुरक्षित स्थान पे पहुंच जाएगा उसके बाद नुकसान होगा। तो ये भी भगवान ने गारंटी ली है। इसलिए हमेशा हर बात में निर्भय रहना है। तीव्र पुरुषार्थी एक बार की हुई गलती को रिपीट नहीं करेगा। अगर रोज वही गलती हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ? हमारा अपने आप पे अटेंशन नहीं। गलती करो पर नई करो, पुरानी वाली रिपीट मत करो। रिपीट करने का मतलब क्या हुआ? हम लापरवाह हैं। मम्मा का ये फेमस मंत्र था, एक बार की हुई गलती को दोहराना नहीं है। तीव्र पुरुषार्थी सबका शुभचिंतक होगा, ये तो हम सबका महामंत्र है। शुभ भावना, शुभ काम। दिन भर में बेशक हमारे कितने भी संकल्प, जमा खाते में केवल शुभ भावना के संकल्प ही जमा होते, बाकी के सब संकल्प उस खाते में जमा नहीं होते। और हमें जमा चाहिए, जमा खाता जितना बढ़ेगा उतने हम अमीर बनेंगे, उतना बड़ा पद मिलेगा। तो हर संकल्प के ऊपर हमारा अटेंशन चाहिए कि ये शुभ भावना वाला है। जो अच्छा हमारे साथ करते उनका तो हम भला सोचते हैं, पर जो हमारे साथ अच्छा नहीं करते उनके लिए भी हमको भला सोचना है। क्यों? क्योंकि हमको अपना खाता भरपूर करना है। उनका क्या बिगड़ेगा अगर हम उनका बुरा सोचेंगे? तो बिगड़ तो हमारा जाएगा, खाता तो हमारा खाली हो जाएगा। इसलिए हर परिस्थिति में हर व्यक्ति के साथ हमारी शुभ भावना, शुभ कामना बनी रहनी चाहिए। ऐसे तो तीव्र पुरुषार्थी की और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय की सीमा को देखते हुए हम यहीं पे पूरा करते हैं। और इतनी बातें भी अगर हम धारण कर लेंगे तो हम तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे, लेकिन यहाँ से ये दृढ़ संकल्प करके उठना है कि 2 मास में मुझे होमवर्क जरूर पूरा करना है। और अब मैं साधारण पुरुषार्थी नहीं हूं, मैं तीव्र पुरुषार्थी हूं। मुझे बनना ही है, करना ही है, क्योंकि दृढ़ता के बिना सफलता नहीं मिलती। बार बार अपने से संकल्प दृढ़ करना है कि मैं तीव्र पुरुषार्थी हूं। जैसे पानी जो है ना, वो 100 डिग्री पे भाप बनता है। अगर कोई 50 डिग्री तक उसे उबाल ले तो भाप नहीं बनता। अगर कोई ढीला ढाला संकल्प करे कि हाँ बनना तो है तीव्र पुरुषार्थी, बन जाऊंगा, कल बन जाऊंगा, तो वो भाप नहीं बनेगी। आपको 100% दृढ़ संकल्प करना है। मरना पड़े, मिटना पड़े, सहना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन मुझे बाबा की आज्ञा का पालन करना है। मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? मैं भगवान का बना और भगवान की आज्ञा ना मानू तो भगवान का बनने का फायदा क्या होगा? इसलिए कामों को आगे पीछे करो, लौकिक कामों को थोड़ा सा हल्का करो, इन्वॉल्वमेंट को कम करो, लेकिन तीव्र पुरुषार्थ करना ही है। और बाबा ने कहा जो दृढ़ संकल्प करेगा बाबा उसको कई गुना मदद भी करेगा। तो आप बाबा की मदद का भी अनुभव करेंगे, एक कदम हमारा और 1000 कदम बाबा के मदद के। तो इस शुभ भावना के साथ हम इस क्लास को पूरा कर रहे हैं कि 2 मास में आप सब बहुत तीव्र गति से उड़ने वाले बाबा के उड़ती कला वाले बच्चे बन के बन रहे।
धन्यवाद दीदी जी। वर्तमान समय अनुसार तीव्र पुरुषार्थी को कौन कौन सी धारणाएं करनी चाहिए, इस पर आपने प्रकाश डाला। जरूर हम सभी तीव्र पुरुषार्थ भी करेंगे, और आपने जो भी ज्ञान की बातें सुनाई उसको अपने जीवन में धारण करने का दृढ़ संकल्प करेंगे। धन्यवाद दीदी जी।
धूप में कभी छाओ बनकर लहरों में कभी नाव बनकर धूप में कभी छाओ बनकर लहरों में कभी नाव बनकर लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ जब लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ मेरे बाबा है साथ 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 जब भी छाने लगे ये अंधेरा मेरे संग संग चले जो सवेरा जब भी छाने लगे ये अंधेरा मेरे संग संग चले जो सवेरा हर लम्हा दीप बन के जले कांटों पे भी मेरे संग संग चले अब तो लगता है जन्नत बनी हयात मेरे बाबा है साथ मेरे बाबा है साथ मेरे बाबा है साथ मेरे बाबा है साथ मेरे बाबा